बोला पुस्तक 11वीं लेक्चर नंबर 2।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम सुतात्मने नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आर्यान नमो वच्छायान नमो लोये सौवसाम वेदग वेदग वेदगम तवेदगम वेदगंथ संसिद्धम सिद्धं पणनीय शिरसा तोच्छं वेदत महायालनं।
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है जो कषाय पाहुर तथा शूनि सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा ये तीर्थ आचार्य जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 11वीं पुस्तक यह भी वेदक नाम का अर्थाधिकार ही चल रहा अपना, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 9 पर आ गए। 10वीं पुस्तक में तो हमने स्थिति उदीर्णा की बात देखी थी, अब यहाँ अनुभाग उदीर्णा की बात चल रही है। उसमें मूल प्रकृति अनुभाग उदीर्णा के प्रकरण में अभी हम काल देख रहे थे, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट का काल हमने जघन्य एक समय उत्कृष्ट दो समय देखा। अब आदेश में हम देख रहे हैं, आदेश में भी देखा, अभी जघन्य की बात चल रही है। उत्कृष्ट की बात तो हमने देख ली है, नारकियों में भी उत्कृष्ट दो समय देखा था, पंचनितीरेंसों में भी देखा था, पंचनितीरेंस अपर्याप्त मनुष्य पर्याप्त में भी ऐसे ही देखा था। अब जघन्य का प्रकरण, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोनि के जघन्य अनुभाग उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। उत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा में तो दो समय लिए, परंतु यहाँ एक ही समय लेना है। अजघन्य अनुभाग उदीरक के तीन भंग हैं, कौन से तीन हो सकते हैं? अजगन्य अनादि से है तो तीन भंग बताओ उसमें।
अनादि अनंत,
अनादि अनंत,
अनादि शांत,
अनादि शांत,
सादी
सादी शांत। हाँ, अनादि अनंत अभव्य की अपेक्षा, भव्य की अपेक्षा अनादि है और शांत हो गया क्योंकि वो तो 10वें के अंत में आ गया और उपशम श्रेणी में फिर दोबारा शुरू होता है, वो तो निश्चित रूप से अंत होने वाला है। तो सादी शांत, हाँ, तो इसमें ये जो तीन भंग है उनमें से जो सादी शांत भंग है उसका जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अंतर्मूर्त क्यों? क्योंकि शुरू हुआ है, अजघन्य ही रहेगा, दोबारा जघन्य करेगा तब जब दोबारा श्रेणी चढ़ेगा, हो सकता है उच्चन श्रेणी चढ़े सपक तो तभी उसका जघन्य हो जाएगा। और उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, शुरू में एक बार उच्चन श्रेणी करके उतरा है, अभी फिर अंत में जाके उपशमय सपक श्रेणी चढ़ेगा।
तो एक ही बार होगा ना, तो सपक श्रेणी में
जघन्य
अजघन्य का बराबर अंतर हो जाएगा, पर जघन्य तो सपक श्रेणी में अंतिम समय ही होगा ना, सपना के अंतिम समय।
अभी उसका हमने कहाँ पढ़ा?
नहीं, जघन्य का,
जघन्य का लगातार काल की बात है, एक समय लिया। अजघन्य में अजघन्य की, तो सादी शांत तभी घटित होगा जब उपशम श्रेणी में उसने जघन्य करके दोबारा जघन्य अजघन्य कर दिया, या अजघन्य ऐसा है कि उसने था ही नहीं और अजघन्य कर दिया। तभी
अजगण्य था नहीं और चालू हुआ,
कुछ था ही नहीं और अजगण्य चालू हो गया, उसको हम अजगण्य कहें। क्योंकि मिनिमम पॉसिबल उपशम छपक श्रेणी में होगा, मनुष्य त्रिक में मोहनी के जघन्य अनुभाग उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, अजघन्य अनुभाग उदीरक का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। मैंने थ्रू आउट उसने किया ही नहीं ना अजघन्य ही रहा, क्योंकि वो मनुष्य त्रिक बताया है तो उसको जब मनुष्य में आया तब शुरुआत हो गई, वहाँ कोई श्रेणी वगैरह की अपेक्षा नहीं लेनी है। 10 नंबर के पेज पर आ गए, शेष गतियों में उत्कृष्ट के समान भंग हैं, उत्कृष्ट के समान भंग है यानी क्या, वो शादी है सबसे
यानी
उसको उत्कृष्ट में हमने क्या देखा था, उत्कृष्ट की बात जघन्य की तिर्यंचों में वो लंबा काल देखा था हाँ। अजगण्य में उत्कृष्ट की बात हमने जो देखी
थी, हमने
उत्कृष्ट में तो हमने उत्कृष्ट का काल जब देखा था तो दो समय देखा था है ना,
उत्कृष्ट का खुद ही
और गतियों में कैसा लेना था अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। अनुत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट का लंबा काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण होता है। विशेषांक, वैसे अजगण्य का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, यानी शेष गतियों में जो उत्कृष्ट के समान भंग किया तो शेष गतियों में अनुत्कृष्ट का अपनी अपनी स्थिति प्रमाण था,
और उत्कृष्ट
ऐसे यहाँ अजगण्य का अपनी अपनी स्थिति प्रमाण होगा। इसी प्रकार अनाहत मार्गणा तक जानना विशेष संकलेश परिणाम लगातार रहने का कार्य, दो समय अब विशेष अर्थ देखते हैं। मोनी की जघन्य अनुभाग उदीर्णा क्षपक श्रेणी में सकषाय भाव के एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहने पर एक समय तक होती है। इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। जो जीव उपशम श्रेणी पर आरोहण कर अंतर्मुहूर्त काल के बाद पुनः क्षपक श्रेणी पर आरोहण करता है उसके मोनी की अजघन्य अनुभाग उदीर्णा का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त देखा जाता है, यानी दूसरी बार क्षपक श्रेणी चढ़ाना है।
और अजघन्य का अंतर्मुहूर्त तो दो बार श्रेणी की अपेक्षा से हो जाएगा ना,
हो जाएगा, परंतु यहाँ जो एक समय कम घटित होगा ना, यहाँ पर इसका जघन्य हुआ और उसका तो मिट गया, इसका तो मिट जाएगा, जघन्य ही रहेगा लास्ट तक और बंद हो जाएगा, और इसका तो अंतिम समय में जघन्य हो जाएगा
तो वो एक समय
तो अनुभाग विभक्ति में उसकी सत्ता वाली बात है और यहाँ तो उदीर्णा की बात। उदीर्णा और सत्ता में डिफरेंस है, सत्ता तो अंतिम समय तक देखेंगे हम, सत्ता कब तक है, जब तक उसका अंतिम निषेध है तब तक सत्ता है, और यहाँ जघन्य अनुभाग उदीर्णा की बात कर रहे हैं, अनुभाग का घटना और वो भी कम से कम स्पर्धकों में से घटना, उसकी बात यहाँ पर है, और घटकर उदय में आना ये भी बात है वहाँ पर। तो यह हमने देखा था अजघन्य का जो जघन्य काल अंतर्मुहूर्त देखा था तो उपशम श्रेणी उत्तर के अंतर्मुहूर्त में क्षपक श्रेणी पर आरोहण किया, उसके अजगण्य अनुभाग उदीर्णा का जघन्य काल अंतर्मोक्ष, और जो जीव उत्सम श्रेणी से उतरते हुए अजघन्य अनुभाग उदीर्णा का प्रारंभ कर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक अजघन्य अनुभाग उदीर्णा ही करता रहता है, उसके कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक अजघन्य अनुभाग उदीर्णा देखी जाती है। इसलिए ओघ से इसका जघन्य काल अंतर्मूल और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। मनुष्य त्रिक में मोहिनी की जघन्य अनुभाग उदीर्णा का जघन्य और उत्कृष्ट एक समय काल ओघ के समान ही घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि जघन्य कब होता है? सबक श्रेणी में जो अंत में आवली प्लस समय बाकी रहा तब। अजघन्य अनुभाग उदीर्णा के काल में विशेषता है। बात यह है कि मनुष्य त्रिक में से कोई एक जीव उपशम श्रेणी पर चढ़ा, पुनः वहां से उतरते हुए एक समय तक उसने मोहिनी कर्म की अजघन्य अनुभाग उदीर्णा की, मनुष्य के लिए उसका एक समय घटित होगा अजघन्य का भी, क्योंकि उसकी गति बदल गई। क्या कहा? उतरते हुए एक समय तक मोहिनी कर्म की अजघन्य अनुभाग उदीर्णा की, इसके बाद मरकर वह देव हो गया। इस प्रकार इस तथ्य को ध्यान में रखकर मनुष्य त्रिक में मोहिनी की अजघन्य अनुभाग उदीर्णा का जघन्य काल एक समय कहा है। उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। जघन्य किया ही नहीं, थ्रू आउट वो अजघन्य ही रहा। शेष गतियों में जैसे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का जघन्य और उत्कृष्ट काल घटित कर आए हैं, उसी प्रकार जघन्य और अजघन्य अनुभाग उदीर्णा का जघन्य और उत्कृष्ट काल घटित कर लेना चाहिए। गतियों में जघन्य अपना अपना अलग होगा, वहाँ तो कोई उपक्षपणा का कार्य नहीं है, तो उसमें वो रूल नहीं लगेगा। शेष गतियों में इसलिए कहा कि मनुष्य त्रिक में तो वो सकसाय के अंतिम समय में होता है, और अन्यत्र
अपनी अपनी।
देखो, हमने स्वामित्व में क्या देखा? जघन्य कहाँ होगा? तो ओघ में तो सकसाय के लिया, आठ नंबर के पेज पर। नारकियों में मोहिनी कर्म की जघन्य अनुभाग उदीर्णा किसके लिए? अन्यतर सम्यक दृष्टि सर्व विशुद्ध नारकी बताया। और तीरियंचों में अन्यतर संयता संयत सर्व विशुद्ध तीरियंच, यानी जहाँ जिसकी विशुद्धि ज्यादा है वहाँ उसको ले लिया जघन्य में, और उत्कृष्ट में संकलेश को ले लिया। अब अंतर देखेंगे हम 10 नंबर के पेज पर। ये अनुयोग नंबर 14, कल हमने नंबरिंग किए थे। अंतर दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहिनी के उत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतर एक अंतरकाल एक समय, कल हमने देखा था। ये तो स्थिति उदीर्णा में उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट में रहेगा तो अंतर्मूर्त तो लगेगा ही, उसके पहले फिर दोबारा उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांध सकता। परंतु यहाँ ये बात नहीं है, कल हमने पढ़ा था अनुभाग बंदर व्यवसाय में ये बात नहीं होती। कल आप थे कि नहीं थे? देखो ये हमने देखा पेज नंबर 8 पर जो विशेषार्थ है, वो दो चार लाइन हम पढ़ेंगे फिर दोबारा। उत्कृष्ट संकलेश का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। एक काल की बात चल रही है यहाँ पर, अंतर की बात नहीं। फिर भी वहाँ क्या कहना चाहते वो देखेंगे। इसलिए हम मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का जघन्य काल एक समय इसलिए है क्योंकि, यानी अनुत्कृष्ट का जहाँ एक समय होगा वहाँ उत्कृष्ट का अंतर एक समय हो सकता है, क्योंकि जो जीव उत्कृष्ट अनुभाग बंध के योग्य उत्कृष्ट संकलेश परिणाम से परिणम कर उत्कृष्ट अनुभाग की उदीर्णा करके परिणामवश एक समय तक अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा करता है, उसके मौनी कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का जघन्य काल एक समय पाया जाता है। यद्यपि अभी यहाँ कारण बता रहे, उत्कृष्ट संकलेश से प्रतिभग्न हुआ जीव अंतर्मुहूर्त हुए बिना पुनः उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त नहीं होता, ऐसा नियम है। परंतु अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थानों में इस प्रकार का नियम नहीं है, इसलिए अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का जघन्य काल एक समय बन जाता है। अब इसलिए यहाँ पर अंतर में जब हम देख रहे थे, अभी आना अपने पृष्ठ संख्या 10 पर, कि अंतर देख रहे हैं, वहाँ हमने सेकंड लाइन में पढ़ा कि ओघ से मोहनी के उत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतर काल एक समय है।
तो यहाँ पे ऐसे बताया ना कि एक ही समान परिणाम के साथ जो अंतर्मुख काल तक एक ही परिणाम में रहता है, उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला। तो हमने देखा था कि उत्कृष्ट अनुभाग बंद लगातार हो सकता है तो कितने समय तक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अनुभाग बंद अधिकार की
यहाँ बंद की बात ही नहीं है। जैसे बंधने के बाद हर समय स्थिति कम होती चली जाती है, वहाँ वो नियम अनुभाग में नहीं लगाना, वो स्थिति वाली बात सोचना बंद कर दो।
नहीं, पर जो समान परिणाम के साथ ही अनुभाग उत्कृष्ट में उत्कृष्ट,
अभी हमने क्या देखा, ऐसा नियम अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान में नहीं है।
तो कम ज्यादा परिणाम वर्ष भी उत्कृष्ट अनुभाग बन सकता है, ऐसा उनका कहना है।
अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान से अनुभाग बनता है, तो उसकी भी रेंज है।
नहीं, उत्कृष्ट संकलेश के साथ ही ये बदलेगा कि थोड़ा कम संकलेश होगा तो भी अनुभाग ज्यादा बन सकता है,
डिफरेंस है उसमें। ये अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान की बात अपने कर्मकांड में सेकंड भाग में ली है, तो इसमें और उसमें अंतर है। जहाँ हम संकलेश परिणाम कहते हैं, तो एक विशिष्ट संकलेश परिणाम में जिसको हम कषाय अध्यवसाय कहेंगे, स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान कहेंगे, एक एक में अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण पाए जाते हैं एक एक परिणाम के साथ, इसलिए उसकी इसकी कंपैरिजन नहीं हो सकती। ख्याल में आती है ना, ये जो अपने अनुभाग विभक्ति, हाँ, ऐसा यहाँ ये जरूरी नहीं है कि उसके कम भी हो सकता है, अनुत्कृष्ट एक समय तक भी हो सकता है। वहाँ उत्कृष्ट के बाद जब अनुत्कृष्ट होता था स्थिति बंध में, तो अंतर्मुहूर्त लगेगा, फिर दोबारा तब भी जाके उत्कृष्ट बंध करेगा। अब यहाँ पर ऐसा है कि एक समय तक भी अनुत्कृष्ट हो सकता है, ये अनुभाग उदीर्णा की बात कर रहे हैं। उत्कृष्ट विभक्ति और इसमें थोड़ा डिफरेंस होगा, अभी इसके साथ विभक्ति वाले पुस्तक निकाल निकाल कर उसकी कंपैरिजन करनी पड़ेगी। विभक्ति में तो सत्ता की बात आती है।
यहाँ पे मैंने क्यों पूछा, क्योंकि के उत्कृष्ट संकलेश वाला परिणाम है वो लगातार कितने समय तक,
उत्कृष्ट संकलेश परिणाम एक ही समय लगातार कितने, जिसको हम संकलेश कहते हैं, तो अंतर्मुहूर्त रह सकता है ना,
अंतर्मुहूर्त रहेगा।
परंतु यहाँ हम कल वो हमने योग की भी बात ली थी, दो समय लगातार रहने की बात, जो कि सर्वोत्कृष्ट जो है उसकी बात ली थी ना, सर्वोत्कृष्ट संकलेश परिणाम,
तो सर्वोत्कृष्ट संकलेश परिणाम में वो अंतर्मुख काल तक।
अभी यहाँ ये अनुभाग बंध अध्यवसाय के स्थान की अपेक्षा संकलेश लेना, अभी तक हम स्थिति की अपेक्षा संकलेश की बात करते हैं।
उत्कृष्ट की अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थायी का उस पर फर्क पड़ेगा, पर उत्कृष्ट का वही उत्कृष्ट परिणाम के साथ उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा कि कम संकलेश वाला जो परिणाम है उसकी उसके साथ भी,
हाँ उसकी रेंज होगी, उत्कृष्ट के साथ रेंज होगी।
हाँ,
परिणाम के साथ अनुभाग बंद अलग अलग हो सकते हैं ना उसके। देखो हमने क्या क्या देखे थे, एक तो स्थिति,
हाँ,
फिर स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान, एक एक के साथ असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग,
सभी जगह असंख्यात लोक,
और उसमें योग लगाए थे वो भी असंख्यात लगे थे, एक एक अनुभाग के साथ अलग अलग असंख्यात योग भी देखे थे, वो तो बात अलग है। उससे तो यहाँ की कुछ अनुभाग में तो उसका कुछ लगता नहीं है, योग से तो अनुभाग नहीं बनता है,
परमाणु की संख्या लगती है।
तो इसके साथ हम अनुभाग उदीरणा की बात करेंगे या पहले हमने अनुभाग के जो अलग अलग स्थान भी, क्योंकि अनुभाग का सारा प्रकरण ही अलग है। धवला में भी एक में हमने 64 अलग अलग दंडक देखे थे अनुभाग संबंधी, वहाँ तो सभी प्रकृतियों की बात की थी। अनुभाग विभक्ति का तुम्हें आपने लिया, किसमें लिया? आप लाए थे साथ, लाना जरा, क्योंकि उसकी वो अनुभाग उतना तो अंतर्मूर्त रहेगा, बाद में वो घटेगा। हाँ देखो, ये अनुभाग विभक्ति की बात चल रही है ना यहाँ पर। देखो ये हम प्रस्थान में पढ़े, सामान्य से ये 5वीं नंबर की पुस्तक है। मोहनी के उत्कृष्ट अनुभाग का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि इसके उत्कृष्ट अनुभाग बंद होने के बाद उसका अंतर्मूर्त में नियम से घात हो जाता है। इसके अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अनुभाग के अनुत्कृष्ट होने पर, ये तो सत्ता की बात चल रही है, अनुभाग के अनुत्कृष्ट होने पर बंध द्वारा उसके उत्कृष्ट होने में कम से कम अंतर्मूर्त काल लगता है, ये वही नियम लागू होगा। और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है अनुत्कृष्ट का, क्योंकि एकेंद्रियों में उक्त काल तक परिभ्रमण करने पर वहाँ उत्कृष्ट अनुभाग की प्राप्ति संभव नहीं है। अभी ऐसे उन्होंने उत्तर प्रकृतियों में घटाया है, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। मोहनीय के जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि क्षपक सूक्ष्म संप्राय के अंतिम समय में, अब यहाँ अंतिम समय दिया है। अब अनुभाग विभक्ति, अनुभाग विभक्ति में हम सत्ता की बात करते हैं, जैसे स्थिति विभक्ति में हमने जहाँ एक समय बाकी है तब की बात की थी, तथा इसके पहले वह अजघन्य होता है। अभी उसके तीन अलग अलग हमने देखे थे। उत्तर प्रकृति की बात तो हम यहाँ नहीं लेंगे, उत्तर प्रकृति की आएगी तब करेंगे हम। अब अंतर की बात देखेंगे, वहां भी अनुभाग विभक्ति में अंतर देख रहे हैं कि सामान्य से मुनि के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और अनुभाग उदीरणा में जघन्य अंतर उत्कृष्ट का एक समय देखा, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का घात होकर अंतर्मूर्त में पुनः उसकी प्राप्ति संभव है, और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल प्रमाण है, वो तो एक इंद्रिय की अपेक्षा हमने देखा था। हाँ हाँ वही हो, ये तो सत्ता की अपेक्षा है, और वहाँ तो स्थिति में तो उदीरणा की अपेक्षा भी घटित होता, क्योंकि हर समय एक समय तो घट ही रहा है ना, स्थिति में हर समय एक एक समय की स्थिति घटती चली जाती है, और यहाँ पर अभी बंधा है तो अंतर्मूर्त तक तो उसका घात होगा, अंतर्मूर्त लगेगा उसका घात होने के लिए, फिर भी उत्कृष्ट काल उदीरणा में अंतर्मूर्त नहीं लिया, विभक्ति में लिया है।
हाँ अभी तो लोग, क्योंकि मैंने वही पूछा था ना कि उत्कृष्ट प्रकृति के साथ जो
अंतर्मूर्त
वहाँ पे अधिवसाय स्थान की अपेक्षा कम ज्यादा होगा, तो उसमें अंतर एक समय का पर हो सकता है, क्योंकि
यहाँ विभक्ति की अपेक्षा नहीं है,
विभक्ति के लिए अनुभाग की अपेक्षा है,
अनुभाग उदीरणा की बात है। ये क्या है, जब अनुभव के साथ उसकी विभक्ति की बात हम भूल गए ना, बीच में पुस्तकें हो जाएंगे, ये पांचवी पुस्तक अभी हम 11वें में आ गए, तो इतनी गैप तो बीच में हो ही गई है। तो विभक्ति में भी वो सत्ता की बात आती है, अच्छा कि आपने लाया, और यहाँ पर तो उदीरणा की बात आती है। तो अंतर दो प्रकार का देखा, उत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतर काल एक समय बताए और उत्कृष्ट काल अनंत है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर है। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतर काल एक समय है और उत्कृष्ट अंतर काल अंतर्मूर्त। यह अंतर्मूर्त हुआ वो घात होने के बाद जो कुछ अनुत्कृष्ट बन जाएगा। विशेषार्थ, पहले ओघ से मोनि के अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा का जो जघन्य और उत्कृष्ट काल बतलाए हैं वही यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा का क्रम से जघन्य और उत्कृष्ट अंतर काल है। ख्याल में आई ना बात? अनुत्कृष्ट का जघन्य काल कितना बताया था वहां पर?
अनुत्कृष्ट का जघन्य काल
एक समय बताया,
एक समय बताया
और उत्कृष्ट काल असंख्यात यही उत्कृष्ट का अंतर होगा। तथा ओग से मुनि के अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्ण अपने स्वामित्व को देखते हुए कम से कम एक समय के अंतर से, यानी एक समय के लिए वो उत्कृष्ट हुआ, एक समय के अंतर से और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त काल के अंतर से हो, यह संभव है। इसलिए यहाँ उसका जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त कहा है। खुलासा इस प्रकार है कि मोहनी की अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा करने वाला जो जीव एक समय तक उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा करके एक समय के बाद पुनः अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा करने लगा, उसके तो मोहनी की अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का जघन्य अंतरकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा करने वाला जो जीव उपशम श्रेणी पर आरोहण कर और वहां से उतर कर पुनः अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा करने लगता है, उसके अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त प्राप्त होता है, उसकी अपेक्षा अंतर्मूर्त होगा। लगातार उत्कृष्ट का तो दो ही समय हमने देखा था, लगातार उत्कृष्ट का करने के दो समय थे और यहाँ तो अंतर्मूर्त बता रहे, यानी बीच में उदीर्णा ही नहीं कर रहा था, उस अपेक्षा अंतर्मूर्त होगा। ये बात ख्याल में आती है? अनुत्कृष्ट उदीर्णा का उत्कृष्ट अंतर वो किस अपेक्षा से? बीच में उपशम श्रेणी में वो उदीर्णा ही नहीं करता था, उस अपेक्षा से अनुदीरक हुआ और फिर अनुत्कृष्ट उपशम श्रेणी पर वो अंतिम समय तक अनुत्कृष्ट ही था, फिर अनुदीरक हुआ और फिर उदीरक हुआ। हाँ, मनुष्य में घटित होगा। ये ओघ में जो होता है तो मनुष्य की अपेक्षा बताएंगे ये बात। अब आदेश से यहाँ चलेगी बात। आदेश से नारकियों में मोनी के उत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का अंतरकाल कितना है? जघन्य अंतरकाल एक समय, जैसे हमने ओघ में भी देखा था, और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागर है, यानी बीच में उसने एक जीव की अपेक्षा बात है, शुरुआत में एक बार किया और अंत में जाके फिर किया। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है। अब देखो यहाँ तो कुछ श्रेणी की बात नहीं है, तो जो उत्कृष्ट का काल था वो अनुत्कृष्ट का अंतर कहलाएगा। उत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय देखे, इसलिए अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल दो समय। इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। तिर्यंचों में मोहनी के उत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर है। तिर्यंचों में रहने की उत्कृष्ट स्थिति एक इंद्रियों में। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल दो समय, जैसे अभी सर्वत्र यही बात होगी। अनुत्कृष्ट के अंतर में मात्र उत्तम श्रेणी में अंतर्मुर्त बनेगा
मनुष्य भी अंतर
और उत्कृष्ट बीच में करने की अपेक्षा दो समय अधिक से अधिक हो सकते हैं।
लेकिन
ये जो
है
तीर्यंशों की अपेक्षा उत्कृष्ट नहीं अभी एक इंद्रिय मार्गणा अगर लेते हैं तो उसकी बात नहीं होगी वो गति मार्गणा की अपेक्षा होगी उसमें नहीं आएगी उसमें अंतर नहीं घटित होगा जो कुछ शुरुआत में अनुभव उत्कृष्ट लेके आया है वो घटते चले जाएगा ना बाद में
नहीं नहीं एक ही समय में
नहीं उसका अंतर तो नहीं होगा ना उत्कृष्ट कब होगा शुरू में होगा जब वो पंचेंद्रिय के योग्य अनुभव लेके आया था बाद में तो फिर दोबारा एक इंद्रिय में रहते हुए उत्कृष्ट नहीं करेगा
तो समुत्पत्ति होता है तभी अनुभाग भी कम होता जाएगा ना
अनुभाग भी घटेगा अनुभाग भी घटेगा क्योंकि वो अभी एक इंद्रिय के योग्य बांध रहे कि नहीं उसके संकलेश है उसके संकलेश है नहीं है वो नहीं है उसके योग्य है एक इंद्रिय के योग्य वो स्थिति भी कम बांध रहा है तो अनुभाग भी उतना कम बन रहा है और जो पंचेंद्रिय का अनुभाग था वो तो घटेगा क्यों
नहीं नहीं मैं क्या सोच रहा था कि क्रिया की अपेक्षा जो हम लोग अनुभाग का कम होना देखते हैं वो एक इंद्रिय में होगा कि नहीं समुत्पत्ति
उस क्रिया की कहाँ बात है यहाँ पर
क्रिया के नहीं पर जो विशुद्धि के साथ जो भाव
देखो,
होगा
पंचेंद्रियों में स्थिति कांड घात होते हैं तब क्रिया होती समय को प्राप्त करता है विसंधि ना करता है एक इंद्रियों में स्थिति कांड घात क्यों होते हैं इतनी कम विशुद्धि अन्यथा पंचेंद्रियों को श्रेणी में जितनी होगी तभी वो ज्यादा विशुद्ध होगी तभी उसके एक इंद्रिय के योग्य या उससे भी कम बंद करेगा अदरवाइज एक इंद्रिय में सबसे कम बंद है
अगर वो स्थिति की अपेक्षा जैसे हम लोग जो अनुभाग की अपेक्षा
अनुभाग में भी चलेगा कि नहीं उसमें उतनी विशुद्धि है कि नहीं क्या अनुभाग बहुत बांधेगा और स्थिति कम बांधेगा स्थिति और अनुभाग दोनों का प्रपोर्शन किससे होता है तो कषाय से होता है तो उसके उतने है कि
नहीं वो तो कषाय से होते हैं पर मैं क्या पूछ रहा था कि जब सबसे समुत्पत्ति स्थिति की अपेक्षा हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे स्थिति की कोई अपेक्षा स्थिति में कम स्थिति बांधता है
पर अनुभाग भी कम बांध रहा है
क्योंकि उसके
अनुभाग क्यों ज्यादा बांधेगा
ज्यादा नहीं बांधेगा पर उदय उसका ज्यादा है तो उसके घात होता है इंद्रियों की अपेक्षा जो नानावरण का सही हो जाता है जितना नानावरण हो जो पंचेंद्रिय में नानावरण जो है उसे एक इंद्रिय में बहुत कम है तो अनुपात
ज्ञानावरण मत कहो ज्ञान का उघाड़ कहो
हाँ ज्ञान का उघाड़
ज्ञानावरण तो अधिक यानी उसका अनुभाग का
अनुभाग ज्यादा है तो ज्ञान कम
अच्छा आपको ज्ञानावरण की बात
घटित वो अपेक्षा से देखेंगे तो अनुपात भी कम होता जाएगा ऐसे मैंने क्वेश्चन किया था क्योंकि अनुभाग ज्यादा होगा तो घात ज्यादा होगा
यहाँ तो मात्र मोहिनी की बात लगानी है
नहीं बराबर है पर सभी में ऐसा होगा ना अर्थ समुत्पत्ति होता है तो सभी में स्थिति कम होती जाती है तो वहाँ पे अनुपात कम हो जाएगा तो ज्ञान का उघाट ज्यादा हो जाएगा
अनुभाग घात की बात
हाँ
यहाँ तो हम मोहिनी की बात कर रहे हैं
क्योंकि मैं ऐसा समझता था कि स्थिति कम बनती है पर अनुपात तो वही रहता है क्योंकि घात की अपेक्षा देखेगा तो अनुभाग ज्यादा है तो घात ज्यादा होता है
नहीं
ज्ञान की सभी में सभी में सभी उसकी योग्यता संकलेश की योग्यता
उदय किस रूप में है
सर्वघाती के रूप नहीं
उसका उदय किस रूप में उसके निशे ये सब अनुभाग पड़े हैं सत्ता में भले पड़े
तो वही मैंने पूछा था अनुभाग भी हस्तकबूतपत्ति के साथ अनुभाग की भी कटौती होगी के लिए
वहाँ सत्ता में भले उत्कृष्ट पड़ा है परंतु उसके उदय किस रूप में हो रहा है अभी हमने जो देखा ना जगह से उत्कृष्ट का अनुभाग के वहाँ पड़े हैं सत्ता में पड़े हैं तो किस रूप में उसका उदय होगा अधिक अनुभाग रूप से उदय होगा कि कम अनुभाग रूप से
अधिक अनुभाग रूप से तो अधिक अनुभाग रूप से उदय होगा तो वो जो पंचेंद्रिय के स्वयं में उससे तो उसका सर्वोत्तम कम है तो वहाँ पे
अनुभव ज्यादा है उसका।
हाँ, तो वही मैंने पूछा ना कि हत्या समुत्पत्ति के साथ अनुभव की भी कटौती होगी कि नहीं होगी।
उसके योग्य कटौती तो वहाँ पर भी होगी, अनुभाग की कटौती उसके योग्य हो सकती है ना वहाँ पर।
तो अनुभाग इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाटएवर परिणाम,
उसके उदय किस अनुभाग रूप से हो रहा है। हाँ,
और उनका एक स्थानी वहाँ होगा ही नहीं, स्थानी दृष्टा नहीं रहेगा।
अभी उसकी तो बात यहाँ होगी ही नहीं ना,
उसको फर्क क्या पड़ेगा।
ये नहीं, उसमें भी अभी अभी हमारा जितना उदय उगाड़ जो कुछ चल रहा है उसमें भी कम अधिक है कि नहीं। तो यहाँ जो कुछ उसने ज्ञान आवरण बांधा है उसमें उदीर्णा भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। परंतु तो उदीर्णा होकर
इसीलिए
मैंने बोला ना, वो जो 64 भाग है कौन सी गति में कहाँ कौन सा अनुभाग कम ज्यादा होता, उसमें पांचवे पुस्तक में था कि हमने धवला में पढ़ा था।
नहीं, धवला में पढ़ा था
64 दंडक बताया था कौन सा अनुभाग कहाँ होता है, कितना होता है, यानी कौन से प्रकृति का अनुभाग कहाँ कितना होता है उसकी बात है। हाँ, दंडक की बात थी वहाँ पर। अभी यहाँ उदीरक में किस रूप से अभी कहाँ से उदीर्ण हो रही है और किस रूप से अनुभाग जगन्य से यहाँ उत्कृष्ट पड़े सकता है।
तो इसी देखते कि अनुभाग कम हो जाएगा तो भी उसका घात ज्यादा होगा, इससे मेरा क्वेश्चन था।
अभी अनुभाग में जो है ना नया बंध तो उसका उसके योग्य होगा ना।
नहीं, बंद तो उसके योग्य होगा, पर जो वो बघात करके आया है पंचमी में उसमें अनुभाग ज्यादा बंद किया था वही उसी उदय में आ रहा है और उसके अनुघात ज्यादा हो रहा है। हत्या समुत्पत्ति की स्थिति तो कम होती जाती है पर अनुभाग कम होता जाता है।
अनुभाग का प्रकरण फिर वो धवला में से निकालना पड़ेगा। मोहनी की बात तो यहाँ पर है।
क्वेश्चन नहीं, आपका तो होगा, पर व्याज लिखते हैं।
आप प्रश्न जो निकलते हैं ना, जो ढूंढने हैं, बाद में क्या हम भी भूल जाते हैं ना। हाँ, कौन सा ढूंढना था। देखो, आदेश से देख रहे हो। यहाँ तो केवल उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट इतना ही है, उदीर्णा किस रूप में हो रही है उसकी बात यहाँ नहीं है। उदीर्णा कौन से स्पर्धक रूप से उदीर्णा चल रही है उस पर भी निर्भर है ना। कहाँ से कितने नीचे, कितने छोड़कर नीचे आया है वो, समझ में आती बात। स्थिति में जो हम कहेंगे उदीर्णा हो रही है सभी में से हो रही है, सबसे टॉप में से भी हो रही है, नीचे में से भी हो रही है, उसके नीचे भी हो रही है, परंतु स्थिति में तो क्या है, वर्तमान समय वहाँ निश्चित है। अपनी अपनी इतनी स्थिति लांग कर वो वर्तमान में उदय में आया,
उसके साथ उसका अनुभव की
तो वर्तमान समय हम समझ सकते हैं।
हाँ।
जो जो नीचे गए उसकी स्थिति हर समय घटती चली जाएगी। अनुभाग में कैसा लेना है, किस रूप में उसका उदय।
हाँ, वही मैं पूछ
रहा हूं। ये बात अलग होती है उसमें अनुभाग में। यानी अनुभाग का विषय स्थिति के समान नहीं होता है, बहुत जगह फिर कंफ्यूजन हो रहा है। ख्याल में आती मैं क्या कहना चाहती। अनुभाग विभक्ति तो हमने देख ली है, वहाँ तो सत्ता की बात है और यहाँ तो उदय उदीर्णा की बात है। कितने स्पर्धकों में से उदीर्णा होगी।
हाँ, वो तो क्लियरिटी है मेरी की कि स्थिति में और अनुभाग में कोई समानता नहीं है।
हाँ,
पर यहाँ पे क्या उतना उत्कृष्ट अनुभाग हो सकता है।
यानी अनुभाग में अनुभाग ये कांड घात होते कि नहीं, ये अपना प्रश्न।
हाँ।
था लेकिन और यहाँ तो मोहिनी की बात चले।
हाँ।
यहाँ ज्ञानावरण का तो उल्टा होगा।
ज्ञानावरण का उल्टा। हाँ। है, पर यहाँ पे वो किस तरह से भी
आपका प्रश्न भी बोल दीजिए।
हाँ,
नहीं, क्या पूछ रहा हूँ।
हाँ,
ये सर्वघाती, अरे ये घातिया कर्म है इसमें अनुभाग ज्यादा होगा तो घात ज्यादा होगा, अनुभाग कम होगा तो घात कम होगा, बराबर है। तो जो जीव पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट अनुभाग के साथ इकेंद्रीय में जाता है उसकी स्थिति तो कम होती जाती है हर्ष समुत्पत्ति की अपेक्षा, तो अनुभाग कम होगा तो उसका घात भी कम होगा। बोली ये चारों घातिया कर्मों की बात है, तो वहां पे अनुभाग कम होता जाएगा तो वो एकेंद्रीय का उदय अपनी अपेक्षा उनका सर्वोत्तम जो भी मोनिय का भी
यानी वो उनका अनुभाग का घात नहीं होगा। ज्ञानावरण की बात कर रहे हो,
नहीं चारों घातिया में हम लोग ऐसे ही ले सकते हैं ना, क्योंकि मोनिय का उदय मनुष्य में कम होगा कि एकेंद्रीय में कम होगा अनुभाग की अपेक्षा। क्वेश्चन इज यू नो इकेंद्रीय योग्यता वश जाता है तो वहाँ पे उसके चारों घातियों कर्म का अनुभाग ज्यादा होगा कि कम होगा, स्थिति तो कम होती जाती है क्योंकि उसकी योग्यता ही नहीं है ज्यादा बनने की, पर अनुभाग ज्यादा होगा वो अपेक्षा से ही वो इकेंद्रीय में घूम जाए, अनुभाग कम हो जाएगा तो वो दूसरी गति में जा सकेगा।
ये प्रश्न है हाँ अनुभाग में तो नेचुरली अनुभाग पर ही ये सारा निर्भर है ना, अनुभाग कितना बनता है और अनुभाग किस रूप में उदय में आता है, मुख्य बात उदय की चलती है, किस रूप में उसका उदय
तो उदय वहाँ पे क्या एकेंद्रिय में कम अनुभाग उदय में आ रहा है, कम अनुभाग उदय में आ रहा है तो उसका घात भी कम होगा,
अनुभाग उसकी जो योग्य रेंज है उसमें ही होगा ना
उसकी नहीं वहाँ पे तो योग्य रेंज क्या है वहाँ पे स्थिति में तो हमने बहुत विस्तार से देखा है कि उनकी स्थिति की अपेक्षा क्या क्या
है, स्थिति की अपेक्षा तो जो
अनुभाग की अपेक्षा ये क्लैरिटी कभी नहीं हुई है, चावला में भी नहीं आएगी है मेरे ख्याल। लॉजिकली हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, लॉजिकली
यहाँ उनके अनुभाग में वो रोल नहीं होता है ना। चलो चलो यहाँ तो ये हम देखते हैं कि अनुभाग में उदीर्णा की बात चली, उत्कृष्ट उदीर्णा की, तो उसका अंतर देख रहे थे तिर्यंचों में जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन देखा, तब तक उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा नहीं होगी, अनुत्कृष्ट यानी वो किसके होगी, उत्कृष्ट संकलेश वाले को होगी, अब यहाँ इतना संकलेश है ही नहीं, जैसे विशुद्धि भी ज्यादा नहीं तो संकलेश भी उतना, इसकी रेंज कम है ना संकलेश विशुद्धि की जो अपनी एकेंद्रीय के योग्य। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल दो समय है, तिर्यंचों में भी उत्कृष्ट कहाँ होगा तो संघ पंचेंद्रिय में होगा, ये तिर्यंच इन जनरल की बात चल रही है। अब पंचेंद्रिय तिर्यंचित्रिक में मोनिय के उत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है, क्योंकि पूर्व कोटि पृथक्त्व तक उस पर्याय में रहा, शुरू में एक बार किया लास्ट में एक बार किया। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल दो समय, ये दो समय अनुत्कृष्ट का अंतर हर जगह लिया, मनुष्य त्रिक में अंतर मुहूर्त लिया, इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, इसका स्पष्टीकरण ऊपर आया था। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में मोहनीय के उत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, उस पर्याय में रहने। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल दो समय, यहाँ पर भी हमने देखा था उत्कृष्ट का लगातार काल दो समय का, यही बात हम देख के फिर गए थे ना, वो अंतर की अपेक्षा से, यानी उत्कृष्ट का भी अंतर हो सकता है, इसका अर्थ क्या है, वो कभी भी कर सकता है उस पर्याय के योग्य। देवों में मोहिनी के उत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 18 सागर है। साधिक 18 सागर
ये,
वहाँ की उत्कृष्ट आयु है, शुरू में एक बार और लास्ट में एक बार। अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतरकाल दो समय है। इसी प्रकार भुवनवासियों से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है, कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए विशेषार्थ। भोग से मोहनी की अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का जो अंतरकाल बतलाए हैं, वह मनुष्य त्रिक में बन जाने से उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। जो अंतर्मूर्त हमने देखा था उपसम श्रेणी में, अनुदीरक हो जाता है, उस अपेक्षा से अंतर्मूर्त अंतर बन जाता है। सामान्य से देवों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध 12वें स्वर्ग तक ही संभव है, इसलिए उनमें मोहिनी की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा का उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 18 सागर कहा है, शेष कथन सुगम है।
तो ऊपर के स्वर पे दो समय, अरे एक समय से उत्कृष्ट हो सकता है, एक समय के अंतर से अध्यवसन शांति अपेक्षा,
इसके बाद कितना नंबर आता है?
पंद्रह नंबर।
वहाँ उत्कृष्ट का अंतर कैसे घटित होगा?
अध्यवसन शांति अपेक्षा जो आगे से उत्कृष्ट करता
है, जैसे वहाँ अधिक स्थिति नहीं बनती है, अधिक अनुभव बनेगा फिर दोबारा?
नहीं, समान परिणाम जो अंतर्मूर्त तक मानते है और अधिवसन शांति अपेक्षा एक समय के लिए अंतर हो जाता है, इससे वहाँ यहाँ ऊपर के स्वर पे घटित होगा?
यहाँ घटित ही नहीं किया उन्होंने ऊपर के स्वर,
ऊपर के
वही तक है, यानी वो दोबारा हो सकता है ना शुरू में? अच्छा, उसमें अंतर अनुत्कृष्ट का लिया कि उत्कृष्ट देवों में
मोहिनी
अंतकाल अनुत्कृष्ट। हाँ, तो वहाँ जो मोहिनी का बंध है, समय दृष्टि के भी जिसका बंध है, अभी मूल प्रकृति की बात कर रही ना, है इन जनरल बात चल रही है। मैंने सर्वार सिद्धि तक को उन्होंने घटित कर दिया, उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट समझना वहां पर,
हाँ, वो
उनकी अपेक्षा, हाँ। उत्कृष्ट, और यहाँ जो लिखा है वो तो उत्कृष्ट, जिसको हम उत्कृष्ट करते कहते हैं, चारों गतियों में जिसको उत्कृष्ट कहेंगे उसकी अपेक्षा, और ऊपर जो उत्कृष्ट घटित करेंगे तो उनका अपना जो यथा योग्य संकलेश होगा। इसी प्रकार ने वहाँ अनुत्कृष्ट का अंतर जो कहलाएगा वो उनके योग्य अनुत्कृष्ट, उनके योग्य उत्कृष्ट कहलाएगा ना। हमने देखा था ना उस,
हाँ, एक समय देखा था, स्वामित्व में भी अंतर हमने,
नहीं नहीं, स्वामित्व भी देखो ना उसका, यहाँ लिखा 7 नंबर पर,
हाँ, ये जो नीचे से
आनंद से लेकर उपरिम ग्रेविक तक स्वामित्व अनुयोग द्वार में 3-3-6-2-8 लाइन नीचे से,
नीचे 7 मिले
आनंद कल से लेकर उपरिम ग्रेविक, अभी उपरिम ग्रेविक तक की बात चल रही है, ऊपर नहीं गए। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग उदीर्णा किसके होती है? तो तत्प्राज्ञ उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म वाला जो जीव अपने अपने योग्य देवों में उत्पन्न होकर तत्प्राज्ञ संकलेश परिणाम से युक्त है उसकी होती है।
अनुदिश पर तो बताया नीचे, अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में,
हाँ, नीचे जो लिखा है,
हाँ।
हाँ। उसकी कहा तो तत्प्राज्ञ उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्मा वाला, वहाँ वेदक समय दृष्टि लिया, क्योंकि वहाँ सारे ही सम्मी दृष्टि है, उसमें से उत्कृष्ट संकलेश किसके होगा वो बात वहाँ बताई। अब अपने 12 नंबर के पृष्ठ पर आना, जघन्य का प्रकरण। निर्देश दो प्रकार का, अभी जघन्य का प्रकरण है, जघन्य में अंतर देखेंगे अभी हम। ओव और आदेश, ओव से मुनि के जघन्य अनुभाग उदीरक का अंतर काल नहीं है, इसका अर्थ क्या है? चपक दसवें के अंत में जो आवली प्लस एक समय है तभी वो जघन्य है, तो चपक के है तो उसका अंतर नहीं बन सकेगा। अजघन्य अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतर काल एक समय है,
जब उसने श्रेणी में से आके एक समय में मिल जाएगा, नहीं ये तो की बात है।
ओग में भी अजघन्य का अंतर कब होगा?
श्रेणी में ही होगा,
अनुदीरक हो गया बीच में, या बीच में उसने, हाँ श्रेणी में ही होगा,
श्रेणी में ही होगा
अजघन्य का अंतर, और उत्कृष्ट अंतर काल अंतर मुहूर्त है। उपशम श्रेणी में इन्हें एक समय में मरकर जो देव में जाएगा,
नहीं वहां तो अजगरे का अजगर ही रहेगा, तो एक समय कैसे होगा?
एक समय के लिए अनुदीरक रहा,
अच्छा श्रेणी चढ़ते समय एक समय के लिए अनुदीरक हो गए और वापस देव,
क्योंकि बीच में जघन्य होगा ही नहीं,
नहीं होगा।
इतनी विशेषता है, हाँ इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, यानी ओग की बात मनुष्य त्रिक में ही घटित होगी। इतनी विशेषता है कि इनमें यानी मनुष्य त्रिक में अजघन्य अनुभाग उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर काल अंतर मूर्त है, मनुष्य में रहते हुए वो जघन्य अंतर घटित करना है तो अंतर मूर्त तक के लिए उसको अनुदीरक रखना है। एक समय तभी घटित होता है मनुष्य में मरकर वो देव में जाता है, तभी मनुष्य में रहता तो वो पूरे उत्तम श्रेणी जब तक वो अनुदीरक है तब तक उसको अंतर कहेंगे। विशेषार्थ, अजघन्य अनुभाग उदीरणा करने वाला जो जीव उत्तम श्रेणी पर चढ़कर और एक समय के लिए उसका अनुदीरक होकर दूसरे समय में मरकर देव हो जाता है, उसके मोहनी की अजघन्य अनुभाग उदीरणा का जघन्य अंतर काल एक समय बन जाने से वह उक्त काल प्रमाण कहा है। इसका उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है यह स्पष्ट ही है, कारण कि उपशम श्रेणी में इसका उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त देखा जाता है, मनुष्य त्रिक में इसका जघन्य अंतर एक समय नहीं बनता क्योंकि मनुष्य में रहते हुए उपशम श्रेणी का जो अंतर है वो तो उदीरणा का अंतर एक अंतर्मूर्त तो रहेगा है, इसलिए इनमें मोहनीय की अजघन्य अनुभाग उदीरणा का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त कहाँ है शेष कथन सुगम। ये बात ख्याल में आई मनुष्य त्रिक की? अब आगे आदेश से देखेंगे। सब नारकी, सब पंचन्य तिर्यंश और मनुष्य पर्याप्तकों में उत्कृष्ट के समान भंग है। ये जघन्य अजघन्य की बात चल रही है, वह उत्कृष्ट के समान भंग है। देवों में मोहनीय के जघन्य अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागर है। हमने देखा था अन्यत्र नारकियों में कहाँ था जघन्य, सर्व विशुद्ध सम्यक दृष्टि कहा, तिर्यंचों में संयता संयत सर्व विशुद्ध देखा था, तो उसकी विशुद्धि बढ़ने पर उसका जघन्य होता होगा ना फिर दोबारा, तभी तो अंतर घटित होगा। ख्याल में है ना, शुरू में एक बार और फिर लास्ट में एक बार, अपनी स्थिति से कुछ कम। देखो उत्कृष्ट का भंग निकालो, उत्कृष्ट में क्या देखा था हमने आदेश में, नारकी में कुछ कम 33 सागर कहा, यह प्रत्येक नरक में अपनी अपनी स्थिति से कुछ कम लिया था। विशुद्धिकरण परिणाम में शुरू में और फिर अंत में बीच में फिर विचारित हुआ फिर लास्ट में जो कुछ किया देवों में मोहिनी के जघन्य अनुभव उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 हजार देवों में भी देखा सर्वा सिद्धि में घटित किया अजघन्य अनुभव उदीरक का भंग अनुत्कृष्ट के समान अनुत्कृष्ट के लिए वहां क्या लिया था एक समय और दो समय इसी प्रकार भवनवासियों से लेकर सर्वा सिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए इतनी विशेषता कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए मैंने शुरू में एक बार और लास्ट में एक बार करेगा तो कुछ कम अपनी स्थिति तिरियंचों में मोहिनी के जघन्य अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है क्योंकि शुरू के भाव में उसने वो पांचवें गुण स्थान में जघन्य किया था फिर लास्ट में जाके फिर मनुष्य में उत्पन्न होने के पूर्व वाला तिरियंच का भाव लेना लगातार तिरियंच में रखना उसको और जघन्य अनुभाग उदीरक का तिरियंचों में ही बात चल रही है अजघन्य अनुभाग उदीरक का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल दो समय जैसे हम उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट में देखते आए हैं अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर कितना तो दो समय लिया वैसे यहाँ अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर दो समय इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए विशेषार्थ अपने अपने जघन्य अनुभाग उदीरणा के स्वामित्व को जानकर यह अंतरकाल घटित कर लेना चाहिए विशेष वक्तव्य न होने से यह हम उसका अलग से स्पष्टीकरण नहीं कर रहे नाना जीवन की अपेक्षा भंग विचय दो प्रकार का जघन्य और उत्कृष्ट उत्कृष्ट का प्रकरण है निर्देश दो प्रकार का है ओघ और आदेश ओघ से मोहनीय की उत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा के कदाचित सब जीव क्या लिखा है अनुदीरक है क्योंकि उत्कृष्ट का नाम लेकर बताना था ना इसका अर्थ सभी अनुत्कृष्ट वाले कभी ऐसा होगा कि सभी अनुत्कृष्ट वाले उत्कृष्ट के अनुदीरक यानी क्या अनुत्कृष्ट के उदीरक कदाचित नाना जीव अनुदीरक है और एक जीव उदीरक है तथा नाना कदाचित नाना जीव अनुदीरक है और नाना जीव उदीरक है वो उदीरक एक शब्द है जीव और उदीरक में अंतर चाहिए अनुत्कृष्ट की ओर से बात करेंगे तो अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा के कदाचित सब जीव उदीरक है कदाचित नाना जीव उदीरक है और एक जीव अनुदीरक है जो अनुदीरक है वो क्या कर रहा है उत्कृष्ट कर रहा है ये उत्कृष्ट कर रहा है या हम कहेंगे उसको उच्चम श्रेणी में वो अंतर में चल रहा है उसका फिर भी उसकी बात गौण रखेंगे वो उत्कृष्ट कर रहा है तथा कदाचित नाना जीव उदीरक है और नाना जीव अनुदीरक है इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए इतनी विशेषता है कि मनुष्य पर्याप्तों में उत्कृष्ट तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा की अपेक्षा आड़भंग होते हैं ये सांतर मार्गणा है इसलिए यहाँ आड़भंग हो गए क्योंकि कभी तो कोई जीव ही नहीं हो गया ना उसमें हो गए तो क्या हो गए उत्कृष्ट के हो गए करने वाले वो एक भंग होगा उत्कृष्ट के करने वाले कितने हो सकते हैं एक या अनेक या ऐसा भी हो सकता है कि अनुत्कृष्ट के कर रहे हैं वो भी एक होगा या अनेक चार भंग तो ये हुए अब जोड़ी जोड़ी में लेना उत्कृष्ट के एक के साथ अनुत्कृष्ट के एक उत्कृष्ट के एक साथ अनुत्कृष्ट के अनेक फिर उसके साथ लेना अनुत्कृष्ट के एक के साथ उत्कृष्ट का एक और उसके साथ इसके अनेक ऐसे आठ भंग होंगे या उत्कृष्ट को पहले हमने एक लिया उसके साथ अनुत्कृष्ट एक अनेक लगाया फिर उत्कृष्ट के अनेक लेना और उत्कृष्ट के फिर एक अनेक लेना, तो आठ भंग ये हो गए। इसी प्रकार जघन्य की अपेक्षा भी जानना चाहिए, इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। अब मूल प्रकृति अनुभाग उदीर्णा में भागा भाग का प्रकरण होगा, यह है 16 नंबर का अनुयोग द्वार। तो भागा भागानुगम दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहिनी के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं, कहते अनंत वे भाग प्रमाण। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव अनंत बहुभाग प्रमाण है। इसी प्रकार तिरंचों में जानना चाहिए, आदेश से नारकियों में मोहिनी के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं। अभी नारकियों की बात चल रही है, तो असंख्यात वे भाग प्रमाण। ओग में तो अनंत वे भाग प्रमाण और नारकियों में असंख्यात वे भाग प्रमाण। और अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियों से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में जहाँ संख्यात विभाग है वो अलग निकाला, जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वार्थ सिद्धि के देवों में मोहिनी के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं, तो कहते हैं संख्यात विभाग प्रमाण है। जहाँ जहाँ संख्यात संख्या है वहाँ संख्यात विभाग। और अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव कितने हैं, तो संख्यातवा भाग निकाला तो संख्यात बहुभाग। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए तथा इसी प्रकार जगन्य भी ले जाना चाहिए। ले जाना चाहिए ना, उसमें भी यही बात हो कि जगन्य वाले कितने तो संख्यात है और जगन्य कितने तो संख्यात बहुभाग। अब परिमाण नाम का अनुयोग द्वार है, ये नंबर है 17। परिमाण दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहिनी के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव कितने हैं, तो कहते असंख्यात है। और अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव कितने हैं, अनंत हैं। इसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए, आदेश से नारकियों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव कितने हैं, असंख्यात है। उत्कृष्ट के भी और अनुत्कृष्ट के भी। फिर भी हमने भागा भाग में क्या देखा था, उत्कृष्ट वाले असंख्यात वे भाग प्रमाण थे और अनुत्कृष्ट वाले असंख्यात बहुभाग थे। फिर भी दोनों का प्रमाण कितना है, तो असंख्यात है। ये जब असंख्यात कहते हैं, आप कहेंगे अभी अभी हमने भंग विषय में देखा था कि उत्कृष्ट के सभी अनुदीरक हो सकते हैं और यहाँ तो असंख्यात लिखे हैं, तो जब होगे और जब मैक्सिमम होगे तो कितने हो सकते हैं, तो असंख्यात है। क्योंकि भंग विषय में तो हमने कभी देखा, कभी एक भी होगा ऐसा भी हो सकता है और कभी अनेक भी होंगे, तो अनेक कितने हो सकते हैं, तो असंख्यात हो सकते हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव तथा भवनवासियों से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में जानना चाहिए। मनुष्यों में मोहिनी के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव कितने हैं, संख्या है। क्योंकि मोहिनी में कौन करेंगे उत्कृष्ट, पर्याप्त जीव करेंगे। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीव कितने हैं, असंख्या। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वासिद्धि के देवों में मोहनी के उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी उद्गीरक अनुभाग के उद्गीरक जीव कितने हैं तो संख्या है। मनुष्य अपर्याप्त की अपेक्षा बात की थी तो बाकी अनुत्कृष्ट वाले असंख्या देखेंगे, परंतु यहाँ तो हम अनुत्कृष्ट के कितने देखेंगे तो सामान्य मनुष्यों में असंख्यक कहेंगे, और मनुष्य पर्याप्त मनुष्य नहीं सर्वार्थ सिद्धि में कितने होते हैं तो संख्या कह सकते हैं। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब परिमाण में ही जघन्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय के जघन्य अनुभाग के उदीरक जीव कितने हैं संख्या है। अजघन्य अनुभाग के उदीरक जीव कितने हैं अनंत है। ये जब मोहनी के जघन्य अनुभाग के उदीरक जीव संख्यात कहे हैं वो कौन है?
मनुष्य।
हाँ मनुष्य। मनुष्य में कौन सा जीव?
श्रेणी वाले
कहाँ पर? हाँ चपक श्रेणी में। चपक श्रेणी में दसवें के अंत में आवली प्लस एक समय है तभी। ये जो उदीरणा का प्रकरण है ना, एक धवला का भाग हमने उदीरणा पर देखा था मात्र, किसी की उदीरणा अनुभव की उदीरणा वगैरह वो देखना पड़ेगा। हमारा दिन कहाँ चला जाता है पूरा पता नहीं लगता, इतनी बातें चल रही है अभी आजकल तो, सीरी का पुस्तक का तो ये देखना रह जाता है। अजघन्य अनुभाग के उदीरक जीव कितने हैं तो अनंत है। चारों गतियों में उत्कृष्ट के समान भंग है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। यहाँ तो हमने देखा था ना, वो की अपेक्षा जघन्य तो मनुष्यों में होगा और अन्य गतियों में अपना अपना जघन्य उसके सर्व विशुद्ध वाला होगा जो कुछ। तो यहाँ पर अभी आगे का क्षेत्रानुगम देखेंगे 18 नंबर का। क्षेत्रानुगम दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों का कितना क्षेत्र है तो कहते हैं लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों का कितना क्षेत्र है, सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र है। क्योंकि उत्कृष्ट कौन करेंगे? उत्कृष्ट संकलेश वाले, वो कौन है? संगी पंचेंद्रिय, उनका रहने का ठिकाना कितना है तो लोक का असंख्यात वाला। अनुत्कृष्ट का कितना है तो सर्वलोक प्रमाण। इसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए, क्योंकि सर्वलोक वाली बात तिर्यंचों में घटित हो। शेष कतियों में मोहिनी के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों का कितना क्षेत्र है तो लोक के असंख्या के विभाग प्रमाण है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इसी प्रकार जघन्य को भी जानना चाहिए। अब क्षेत्र के बाद स्पर्शन। स्पर्शन में तो अतीत की बात आ गई। स्पर्शन दो प्रकार का, ये नंबर 19 है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से मोहनी के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, लोक के असंख्यात विभाग तथा त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 13 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। नीचे 6 राजु लिए ना और ऊपर 7 राजु लेने चाहिए। हाँ विशेषास में देखेंगे। अनुत्कृष्ट अनुभव के उज्जवल जीवन में सर्व लोग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। विशेषार्थ यहाँ नीचे कुछ कम 6 राज्य और ऊपर कुछ कम 7 राज्य मिलाकर त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 13 राज्य स्पर्शन ओग से मोनी के उत्कृष्ट अनुभाग के उद्दीरक जीवन का जान लेना चाहिए। हाँ नहीं पन त्रसनाली का आप देखना वो तो रहते वो तो ठीक भाई इन्हें त्रस जीव त्रसनाली में पाए जाते
हैं
वहाँ एक इंद्रिय तो होते ही है। त्रस नहीं है फिर भी त्रस नाली की हाइट कितनी है
वही तो कह रहे त्रस नहीं कहना चाहिए
वो तो डेफिनेशन है नहीं उसको तो पूरा ऐसा नहीं एग्जैक्ट उसके जहाँ नहीं रहते उसको त्रस नाली नहीं कहते ऐसा कहेंगे तो दो दो बीच में अंतराल में त्रस नाली नहीं कहनी पड़ेगी उसे दो पृथ्वियों के बीच में असंख्यात योजनाओं का अंतर है तो मारणांति के नीचे एक इंद्रिय में भी करेंगे ना पंचेंद्रिय जीने से नीचे भी एक इंद्रिय में करेंगे मारणांति। अब मारणांति की अपेक्षा तो पूरा लोक होता है मारणांति उपवास की अपेक्षा तो पूरा लोक होगा और केवली समुदाय की अपेक्षा भी पूरा लोक होगा। फिर भी त्रसनाली को 13 राज्य नहीं कहा है अभी मैंने भूगोल लिया ना इसलिए खास वहां पर भी किसी ने प्रश्न पूछा था 13 राज्य क्योंकि नीचे एक राज्य में तो कलकल भूमि है कौन से त्रिलोकोन्नति में लिखा नहीं इसीलिए मैंने खास देखा कि कहीं कहीं लिखा है क्या वो त्रसनाली 13 राज्य कहीं लिखा है तो नहीं वो लिखने में 14 राज्य लिखी हाँ क्योंकि ये प्रश्न तो वहां पर भी आया था अभी फल्टन में कि त्रसनाली तो 13 राज्यों तक ही माननी पड़ेगी नीचे तो एक राज्य तक तो वहाँ कोई नरक नहीं है कोई त्रस्य नहीं रहते वहाँ पर तो 13 राज्य ही मान लो तो नहीं ऐसा नहीं 14 राज्य कुछ कम यानी वो तो बात वाले को छोड़कर मेरे ख्याल से कही होगी पन त्रसनाली का कितना है डायमेंशन तो एक राज्य और 14 राज्य ऐसा ही है सर्वत्र लिखा हुआ है। यहाँ क्या देख रहे थे हम स्पर्शन हाँ उसका विशेषार्थ नीचे कुछ कम 6 राज्य और ऊपर कुछ कम 7 राज्य मिलाकर त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 13 राज्य स्पर्शन ओग से मोहिनी के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों का जान लेना चाहिए। उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों का शेष दो प्रकार का जो स्पर्शन बतलाया है वह सुगम है यानी जो मनुष्य तीरियन से एक इंद्रियों में उत्पन्न होते ऊपर हाँ ऊपर 7 राज्य लिया और नीचे नरक तक जाने वालों की बात ली। आदेश से नारकियों में अभी हरेक गति की बात करें मोहिनी के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है ये सातों सभी नरकों की अपेक्षा। इसी प्रकार दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में जानना चाहिए इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए कितने राज्य नीचे है उतना बताना है। पहली पृथ्वी में तो संख्या त्योजन हो जाएगा तो ये घटित नहीं होगा। प्रथम पृथ्वी में क्षेत्र के समान ने लोक का संख्या तोड़ा यानी वहाँ मारणांतिक की अपेक्षा भी यही घटित होगा। ख्याल में आती बात नारकी पहले पृथ्वी का नारकी मारणांतिक करेगा तो मध्य लोक में करेगा ये हमने ऊपर जो 7 राज्य बताया था वो कौन सी गति की अपेक्षा होगा हाँ 7 राज्य जाने वाला सीरियन और 7वीं पृथ्वी में कौन कौन मारणांतिक करेंगे मेरा प्रश्न
मनुष्य भी करेगा
मनुष्य करेंगे और
सीरियन तो करेगा
दो ही करेंगे नारकी एक ही में जाएंगे देव भी जाते हैं ना, सौधर्म सौधर्म ईशान और बहुनत्री वो भी जाते हैं।
कितने व्यक्ति हैं?
पृथ्वी का एक में जाते हैं, आठवीं पृथ्वी में कौन कौन जाते हैं उसकी हमने देखी है।
आठवीं पृथ्वी,
हाँ वही पूछ रहे हैं। ईशत प्रागवान ऊपर सात राज्य जाने वाले उन मरकर जाएंगे तो मारणांतिक भी करेंगे ना वहाँ पे, मिथ्या दृष्टि है वहां तक मारणांतिक करेंगे, इसलिए ऊपर सात राज्य बताया था और नीचे नरक में करने वालों को छह राज्य बताया था। उस काल में उनका उत्कृष्ट संकलेश होता है ना, उसकी बात है। तो यहाँ हमने देखा प्रथम पृथ्वी में क्षेत्र के समान ने लोक का असंख्या तोड़ा। तीर्यंचों में मोनिय के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है। अब तीर्यंचों में करने वाले कौन है? तो संगीत पंचम। तो लोक के असंख्यात विभाग उनका अपना वर्तमान का रहने का। तृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण उत्कृष्ट संकलेश के साथ कहाँ करेंगे? तो नरक में करेंगे, मारणांति करेंगे। तो देव में जाने वाले तो उत्कृष्ट संकलेश वाले नहीं होंगे, उत्कृष्ट विशुद्धि वाले होंगे वहां पर। अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों ने सर्व लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, क्योंकि ये अनुभाग का कोई अनुत्कृष्ट है नहीं, तीव्र उत्कृष्ट संकलेश नहीं है, पूरे लोक में एक इंद्रियों में कहीं भी मारणांतिक होगा। इसी प्रकार और यहाँ तो अनुत्कृष्ट अनुभाग एक इंद्रिय भी है, केवल मारणांतिक की बात नहीं करनी है, क्योंकि तीर्यंच इन जनरल लिया अनुत्कृष्ट का क्षेत्र भी पूरा लोक था। अनुत्कृष्ट का हमने पूरा लोक देखा था ना, अनुत्कृष्ट का क्षेत्र भी पूरा लोक है। क्षेत्र में क्या देखा हमने? अनुत्कृष्ट का पूरा लोक है ना। हाँ, पंचेंद्रिय अभी पढ़ेंगे। इसी प्रकार पंचेंद्रिय त्रिक में जाना चाहिए। पंचेंद्रिय त्रिक में मारणांतिक की अपेक्षा घटित होगा, परंतु मात्र तीर्यंचों में अनुत्कृष्ट किसको होगा? तो अनंत जीवों का है ना, एक इंद्रियों में। इतनी विशेषता है कि अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग उनका वर्तमान का और सर्व लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में मोनि के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग और सर्व लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। यह भी वो मारणांतिक लेख है। अब इसका विशेषण देखते हैं। सामान्य से नारकियों का मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण स्पर्शन बन जाने के कारण इनमें मोनि के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों का उक्त स्पर्शन कहा है। इसी प्रकार तीर्यंच त्रिक में मोनि के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों की अपेक्षा स्पर्शन गठित कर लेना चाहिए। शेष कथन सुगम है। यानी नारकी तीर्यंच में करेंगे क्योंकि 6 भाग प्रमाण बताए ना, सातवें नरक के नारकी तीर्यंचों में करेंगे और तीर्यंच सातवें नरक तक करेंगे, तो ये दोनों का 6 राजू प्रमाण घटित होगा। शेष कथन शुरू में मनुष्य त्रिक में मोनि के उत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है वर्तमान का। और बाकी क्या भी, क्योंकि मनुष्य लिया ना तो मनुष्य तो सातवें नरक में भी जा सकता है कि नहीं जा सकता? हाँ, तो यहाँ क्या लिखा है? असंख्यात। क्यों? अरे 45 लाख योजन में से नीचे जाएगा ना, चलेगा नरक तक। समुद्घात करेगा, तीरियन से करेंगे तो पूरे रस नाली में से करेंगे नीचे तक, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वयंभू रमण तक फैले हुए हैं, वो अंतिम समुद्र में है ना, वहां पर तीरियन उनकी अपेक्षा ले सकते हैं हम वहां पर। और यहाँ मनुष्य करेंगे तो कहाँ करेंगे, सीधे नीचे चले जाएंगे। ख्याल में आई ना बात, मनुष्य त्रिक के लिए उत्कृष्ट संकलेश करके सातवें नरक में जन्म लेगा मनुष्य, मानातिक भी करेगा वहां तक, फिर भी उसको क्या कहा, लोक का संख्या का, क्योंकि वो 45 लाख योजन में से नीचे चले जाएंगे। पहला दंड, हाँ नहीं बन, इससे ही ठीक हो, इसी से ठीक घटित होता है, क्योंकि देव में भी जाने वाले मनुष्यों की अपेक्षा हर जगह हमने वो असंख्या का भाग देखा। क्लियर, सीरेंज के बारे में कुछ था, वो उपवाद का पहला दंड कैसा होता है क्या होता है। हाँ तो ही कठित होगा, पहला नीचे जाएगा और फिर बाद में जो कि सातवें नरक का बीच वाला क्षेत्र भी कितना छोटा ही होगा ना, उसका सेंटर का ही लास्ट योजन वाला ही है इंद्रत का बिल, तो उसका बाह्य क्षेत्र भी बाहरी और भी कितने एक एक ही श्रेणीबद्ध है, पांच ही है ना वहां भी। मनुष्य त्रिक में देख रहे थे हम लोक का असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, क्योंकि सर्वलोक में कहीं भी मारना ती करके जा सकेंगे, इसलिए यहाँ सर्वलोक लिया, भले मनुष्य में से जाएंगे, वहां तो हमने मात्र नरक में जाने वाले देखे। देवों में मुनि के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग, त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 विहार की अपेक्षा और कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, ये 9 भाग में मारणा दिख्य अपेक्षा एक इंद्रिय में करने वाले। इसी प्रकार भवनवासियों से लेकर अच्युत कल्प के देवों में जानना चाहिए। ये क्योंकि 8 भाग प्रमाण घटित होगा, 9 भाग तो नहीं होगा वहां पर, भवनवासियों में होगा 9 भाग। क्या कहते, हाँ ऊपर क्या लिखा, इतनी विशेष है कि अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए, लिख दिया अपना अपना स्पर्शन लिखना है, नहीं भवनवासियों से अपना स्पर्शन लिखेंगे तो पहले में विहार की अपेक्षा 3.5 बताएंगे, फिर अन्य जीव ले जाएंगे तो 8 कहेंगे, फिर 9 कहेंगे, सनत कुमार से लेकर ऊपर तो स्वयं अपने हाथ, और वो तो इसमें नहीं जाएंगे एक इंद्रिय में, तो ऊपर मारणांतिक नहीं होगा उनका, उस अपेक्षा से 9 नहीं घटित होगी, 8 तक घटित होगा। फिर आनत प्राण तारण अच्युत में नीचे 2 राजू नीचे नहीं जाएंगे और 6 राजू तक ही नीचे आएगी, 8 राजू नहीं होगी, इसलिए अपना अपना क्षेत्र अपना अपना स्पर्शन का, आगे क्षेत्र के समान भंग है आगे यानी ऊपर के देवों में, क्योंकि वहाँ उनका विहार नहीं है तो उनका अपना अपना लोक का संख्या प्रभाव। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, यहाँ सर्वत्र अपने अपने स्वामित्व और स्पर्शन को जानकर यह स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए, अन्य कोई विशेषता न होने से अलग से स्पष्टीकरण नहीं किया। अब जघन्य का कल पढ़ेंगे क्या? पढ़ना है कल ही ले लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लो पालो सो वाणी मस्तक न हो सदा नित हो। मैं